एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपकी पहली मेजबान और आज हम एक ऐसे विषय की गहराइयों में उतरने वाले हैं जो सुनने में शायद थोड़ा मुश्किल लगे, पर हमारी दुनिया और हाँ पूरे ब्रह्मांड को समझने के लिए बेहद जरूरी है।
और मैं हूँ आपका दूसरा मेजबान। आज हम बात करेंगे परमाणु के बिल्कुल दिल की, उसके नन्हे से सेंटर की यानी न्यूक्लियस की। और इसे समझने के लिए हम सहारा लेंगे महान भौतिक विज्ञानी और एक बहुत ही शानदार लेखक फ्रैंक क्लोज के काम का, मतलब उनकी किताबों और उनके विचारों के जरिए न्यूक्लियर फिजिक्स की दुनिया की सैर करेंगे।
हाँ, और ये विषय आज इतना जरूरी क्यों है? देखिए, हम अक्सर बड़ी चीजों पर ध्यान देते हैं, जैसे ग्रह, तारे, आकाशगंगाएं, पर इन सब का जो बेस है, वो ऊर्जा जो इन्हें चलाती है, वो तत्व जिनसे सब बने हैं, उन सब का राज कहीं ना कहीं परमाणु के इसी छोटे से केंद्र में छिपा है।
बिल्कुल। तारे क्यों चमकते हैं? या जैसे हमारे शरीर में ये जो कार्बन है, ऑक्सीजन है, लोहा है, ये सब आया कहाँ से?
सही बात है।
या फिर ये परमाणु ऊर्जा, या कहें तो परमाणु बम, इसके पीछे का साइंस क्या है? ये सारे सवाल न्यूक्लियर फिजिक्स से ही तो जुड़े हैं। और फ्रैंक क्लोज हमें दिखाते हैं कि ये सिर्फ कोई लैब में होने वाला विज्ञान नहीं है, ये असल में हमारी कहानी है, ब्रह्मांड की कहानी है।
तो इसे समझना हमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लेकर यूनिवर्स में हमारी अपनी जगह तक सब कुछ बेहतर ढंग से जानने में मदद करता है।
तो शुरुआत करते हैं उस शख्स से जिनके नजरिए से हम इस दुनिया को देखने वाले हैं, फ्रैंक क्लोज।
हाँ, बताइए इनके बारे में।
ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में फिजिक्स के एमेरिटस प्रोफेसर हैं, एक जाने माने थियोरेटिकल फिजिसिस्ट हैं जिनकी स्पेशलिटी है पार्टिकल फिजिक्स और क्वांटम क्रोमोडायनेमिक्स यानी QCD जैसे, मतलब काफी गहरे विषयों में।
QCD, ये थोड़ा समझाएंगे?
हाँ, देखिए, QCD को अगर सरल भाषा में कहें तो ये वो विज्ञान है जो बताता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंदर क्वार्क्स नाम के और भी छोटे कण होते हैं।
अच्छा।
वो कैसे एक बहुत ही ताकतवर गोंद जिसे ग्लुऑन कहते हैं उसके जरिए आपस में चिपके रहते हैं। लेकिन क्लोज की असली खासियत सिर्फ उनका ये गहरा ज्ञान ही नहीं है।
सही कहा।
उनकी सबसे बड़ी खूबी है उनका एक बेहतरीन साइंस कम्युनिकेटर होना, है ना?
बिल्कुल।
वो मुश्किल से मुश्किल साइंटिफिक आइडियाज को भी आम लोगों के लिए दिलचस्प कहानियों में बदल देते हैं।
उन्होंने सर्न जैसी जगहों पर काम किया है, कई अवार्ड्स जीते हैं, जैसे भौतिकी की समझ को बढ़ावा देने के लिए केल्विन मेडल मिला है उन्हें, और द वॉइड, न्यूट्रिनो, द इन्फिनिटी पजल जैसी कई फेमस किताबें लिखी हैं।
क्लोज की यही बात मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। वो सिर्फ ज्ञान नहीं बताते बल्कि क्यों और कैसे भी समझाते हैं। वो साइंस की हिस्ट्री, उसमें शामिल लोगों की कहानियां, उनकी कामयाबी नाकामी सब कुछ साथ लेकर चलते हैं। हाँ, वो फिजिक्स को सिर्फ इक्वेशंस और थ्योरी का ढेर नहीं मानते बल्कि इंसानी जिज्ञासा और खोज की एक रोमांचक यात्रा की तरह देखते हैं। इसीलिए न्यूक्लियस के रहस्यों को समझने के लिए उनका नजरिया एकदम सही लगता है।
तो फ्रैंक क्लोज के काम का मुख्य मकसद क्या है?
वो हमें परमाणु के न्यूक्लियस की उस अनदेखी दुनिया में ले जाना चाहते हैं, ये दिखाने के लिए कि कैसे ये नन्ना सा सेंटर ही हमारे ब्रह्मांड का असली पावर हाउस है और कैसे इसने, आप कह सकती हैं, मॉडर्न साइंस और टेक्नोलॉजी की नींव रखी है।
उनके काम के कुछ मेन आइडियाज क्या हैं?
पहला तो ये कि भाई, पदार्थ आखिर एक साथ कैसे टिका रहता है? इसका जवाब न्यूक्लियस के अंदर काम करने वाली जबरदस्त ताकतों में छिपा है जिन्हें समझना जरूरी है। दूसरा, न्यूक्लियस को समझकर हम बड़े सवालों के जवाब पा सकते हैं, जैसे तारे कैसे जलते हैं, हम जिन तत्वों से बने हैं वो कैसे बने, ऊर्जा का असली सोर्स क्या है।
और तीसरा जो मुझे बहुत दिलचस्प लगता है वो ये कि क्लोज दिखाते हैं कि न्यूक्लियर फिजिक्स कोई अलग थलग आइसोलेटेड सब्जेक्ट नहीं है। ये कॉस्मोलॉजी यानी ब्रह्मांड विज्ञान से, हमारी सभ्यता के विकास से, और यहाँ तक कि युद्ध और शांति जैसी नैतिक चुनौतियों से भी गहराई से जुड़ा हुआ है।
और सबसे अच्छी बात, वो ये सब आम पाठक के लिए लिखते हैं जिन्हें पहले से शायद साइंस का ज्यादा ज्ञान ना हो। वो मुश्किल गणित से बचते हुए कहानी और कॉन्सेप्ट्स पर जोर देते हैं।
तो चलिए अब इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। शुरुआत कहाँ से करें? शायद न्यूक्लियस की खोज से ही।
हाँ हाँ, वो कहानी तो अपने आप में कमाल की है। 1909 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड का वो मशहूर गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। उस समय देखिए, माना जाता था कि परमाणु एक तरह का तरबूज जैसा है जिसमें पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है और इलेक्ट्रॉन उसमें बीज की तरह धंसे हैं। प्लम पुडिंग मॉडल कहते थे।
हाँ, सुना है मैंने।
तो रदरफोर्ड ने सोने की बहुत ही पतली पन्नी पर अल्फा कण, जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, उनकी बौछार की वो सोच रहे थे कि ज्यादातर कण सीधे निकल जाएंगे, शायद थोड़े बहुत मुड़ेंगे।
लेकिन हुआ कुछ और ही, है ना?
बिल्कुल, ज्यादातर तो सीधे निकल गए जैसा सोचा था, पर कुछ कण, मतलब बहुत कम, लगभग 8000 में से एक ऐसे थे जो जोर से टकराकर वापस आ गए, जैसे 90 डिग्री या उससे भी ज्यादा पर मुड़ गए।
बाप रे।
रदरफोर्ड ने बाद में लिखा कि ये उतना ही अविश्वसनीय था जैसे आप किसी पतले टिश्यू पेपर पर 15 इंच का तोप का गोला दागें और वो पलटकर आपको ही लग जाए। क्लोज इस आश्चर्य के पल को बहुत महत्व देते हैं, क्योंकि यहीं से परमाणु की हमारी समझ पूरी तरह बदल गई।
और नतीजा ये निकला कि परमाणु का लगभग सारा वजन और पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज उसके केंद्र में एक बहुत ही छोटी, बहुत ही घनी जगह पर सिमटा हुआ है।
हाँ, इसी केंद्र को न्यूक्लियस कहा गया।
क्लोज इसकी तुलना एक विशाल कैथेड्रल या चर्च से करते हैं जो अंदर से पूरा खाली हो, सिवाय बीच में रखे रेत के एक नन्हे से दाने के जिसमें उस पूरी इमारत का वजन हो।
सोचिए, परमाणु का 99.9% से ज्यादा हिस्सा तो खाली जगह है।
ये सोचना ही अजीब है। तो इस नन्हे से भारी दाने यानी न्यूक्लियस के अंदर क्या है?
इसमें दो तरह के मुख्य कण होते हैं जिन्हें न्यूक्लियॉन कहते हैं। एक तो प्रोटॉन, जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और दूसरे न्यूट्रॉन, जो न्यूट्रल यानी उदासीन होते हैं, कोई चार्ज नहीं।
किसी तत्व की पहचान उसमें मौजूद प्रोटॉनों की संख्या से होती है ना?
बिल्कुल। जैसे कार्बन में हमेशा 6 प्रोटॉन होते हैं, ऑक्सीजन में 8। अगर आप प्रोटॉन की संख्या बदल दें तो तत्व ही बदल जाएगा।
इसे परमाणु संख्या या एटॉमिक नंबर जेड कहते हैं।
लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या बदल सकती है? हाँ, बदल सकती है। एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉन तो उतने ही हो पर न्यूट्रॉन अलग अलग संख्या में हो, उन्हें आइसोटोप कहते हैं। जैसे कार्बन के ज्यादातर परमाणुओं में 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। ये हुआ कार्बन 12, ये स्टेबल है। पर कार्बन का एक और आइसोटोप है कार्बन 14, जिसमें 6 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन होते हैं। ये अस्थिर है, मतलब रेडियोधर्मी है।
अच्छा, तो ये रेडियोधर्मिता क्या बला है? ये अस्थिरता का क्या मतलब है?
क्लोज इसे ऐसे समझाते हैं कि कुछ न्यूक्लियस जैसे कार्बन 14 अपने अंदर की बनावट की वजह से, मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन के कॉम्बिनेशन की वजह से स्टेबल नहीं होते। वो ज्यादा स्टेबल अवस्था में आना चाहते हैं। और ऐसा करने के लिए वो अपने आप बदलते हैं और इस प्रक्रिया में ऊर्जा या कण बाहर फेंकते हैं। इसी को रेडियोधर्मिता या रेडियो एक्टिविटी कहते हैं।
इसके कुछ प्रकार भी होते हैं, है ना?
हाँ हाँ, मुख्य रूप से 3 तरह के क्षय होते हैं। एक है अल्फा क्षय, जिसमें न्यूक्लियस एक हीलियम का न्यूक्लियस यानी 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन वाला एक पैकेट बाहर फेंकता है।
ठीक है।
दूसरा है बीटा क्षय, इसमें एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदल जाता है और एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। ये थोड़ा अजीब है क्योंकि न्यूट्रॉन के अंदर प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन पहले से मौजूद नहीं होते।
हाँ, तो ये कैसे होता है?
ये रूपांतरण कमजोर नाभिकीय बल यानी वीक न्यूक्लियर फोर्स की वजह से होता है। इसके बारे में बाद में बात करेंगे।
ओके, और तीसरा?
तीसरा है गामा क्षय। इसमें अगर न्यूक्लियस ज्यादा एनर्जी वाली स्टेट में है तो वो अपनी फालतू ऊर्जा को गामा किरण यानी बहुत शक्तिशाली प्रकाश के रूप में छोड़ता है। न्यूक्लियस की बनावट नहीं बदलती, बस एनर्जी कम होती है।
और इसी से जुड़ी है हाफ लाइफ या अर्ध आयु की बात।
हाँ, हाफ लाइफ मतलब वो टाइम जिसमें किसी रेडियोधर्मी पदार्थ के आधे परमाणु क्षय हो जाते हैं यानी बदल जाते हैं।
और पता लगाने में करते हैं, जिसे कार्बन डेटिंग कहते हैं, है ना कमाल?
बिल्कुल।
पर न्यूक्लियस की सबसे मशहूर चीज तो उसकी ऊर्जा है। आइंस्टाइन का वो विश्व प्रसिद्ध समीकरण E=mc2।
हाँ, और क्लोज जोर देते हैं कि इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि पदार्थ मास m ऊर्जा e में बदल सकता है, बल्कि ये कि पदार्थ ही ऊर्जा का एक बेहद कंडेंस्ड रूप है।
कंडेंस्ड रूप?
हाँ, मतलब जमा हुआ। और सी स्क्वायर प्रकाश की गति का वर्ग एक बहुत बहुत बड़ी संख्या है। इसका मतलब है कि जरा से पदार्थ में भी अपार, मतलब बहुत ज्यादा ऊर्जा छिपी है।
पर ये ऊर्जा आती कहां से है? क्या न्यूक्लियस के अंदर कोई बैटरी लगी है?
नहीं, बैटरी तो नहीं। ये आती है बंधन ऊर्जा या बाइंडिंग एनर्जी से। देखिए, जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर एक न्यूक्लियस बनाते हैं तो उस बने हुए न्यूक्लियस का वजन उसे बनाने वाले अलग अलग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कुल वजन से थोड़ा कम होता है।
क्या? वजन कम कैसे हो गया? गायब हो गया?
यही तो कमाल है। वो जो वजन गायब हुआ वही E=mc2 के मुताबिक ऊर्जा में बदल गया है, और यही ऊर्जा उन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कसकर एक साथ बांधे रखती है।
ओह, तो ये है बंधन ऊर्जा।
हाँ, और जिन न्यूक्लियस की बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन ज्यादा होती है वो ज्यादा स्थिर होते हैं। सबसे ज्यादा स्थिर लोहा होता है, मतलब उसके आसपास के तत्व।
अच्छा, तो क्या इस बंधन ऊर्जा को बाहर निकाला जा सकता है, मतलब इस्तेमाल किया जा सकता है?
हाँ बिल्कुल, इसके दो मुख्य तरीके हैं। पहला है विखंडन, फिशन। इसमें एक भारी कम स्थिर न्यूक्लियस जैसे यूरेनियम 235 को न्यूट्रॉन से टक्कर मार के दो या ज्यादा हल्के ज्यादा स्थिर न्यूक्लियस में तोड़ा जाता है। इससे साथ में कुछ और न्यूट्रॉन निकलते हैं और ढेर सारी ऊर्जा निकलती है, क्योंकि कुल द्रव्यमान कम हो जाता है, वो ऊर्जा में बदल जाता है।
यही परमाणु बम और न्यूक्लियर रिएक्टर का आधार है।
बिल्कुल, वो जो न्यूट्रॉन निकलते हैं वो आगे और यूरेनियम को तोड़ते हैं और एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। रिएक्टर में इसे कंट्रोल करते हैं, बम में नहीं।
और दूसरा तरीका
वो है संलयन, फ्यूजन। इसमें ठीक उल्टा होता है। दो बहुत हल्के न्यूक्लियस जैसे हाइड्रोजन के आइसोटोप ड्यूटेरियम और ट्रिटियम को जबरदस्त तापमान और दबाव में आपस में जोड़ा जाता है।
अच्छा,
इससे एक भारी न्यूक्लियस बनता है जैसे हीलियम। इस प्रक्रिया में विखंडन से भी कई ज्यादा ऊर्जा निकलती है।
वाह, यही वो प्रक्रिया है जो हमारे सूरज और बाकी तारों को
हाँ अरबों सालों से रोशन रखे हुए है। सूरज के कोर में यही हो रहा है।
वाह, पर एक सवाल मेरे दिमाग में अभी भी घूम रहा है। आपने कहा न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं जिन पर पॉजिटिव चार्ज है। तो इतने सारे पॉजिटिव चार्ज वाले प्रोटॉन एक दूसरे को धक्का क्यों नहीं मारते? बिजली का नियम तो कहता है कि सेम चार्ज रिपेल करते हैं, मतलब न्यूक्लियस को तो फट जाना चाहिए।
कम दूरी तक काम करने वाली ताकत से मिलना होता है, यह है प्रबल नाभिकीय बल।
सबसे शक्तिशाली बिजली से भी ज्यादा?
हाँ, बिजली के बल से लगभग 100 गुना ज्यादा मजबूत होता है ये। लेकिन इसकी पहुंच सिर्फ न्यूक्लियस के साइज तक ही सीमित होती है। उससे जरा सा बाहर निकले तो ये बल गायब हो जाता है।
अच्छा,
ये प्रोटॉन को प्रोटॉन से, न्यूट्रॉन को न्यूट्रॉन से और प्रोटॉन को न्यूट्रॉन से, सबको एक दूसरे से चिपकाए रखता है। ये बिजली वाले रिपल्शन पर हावी हो जाता है।
क्लोज ने इसकी तुलना सब एटॉमिक वेलक्रो से की थी, है ना?
एकदम सही। पास लाने पर जबरदस्त पकड़, पर जरा सी दूरी पर बिल्कुल बेअसर। इसीलिए हम इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में महसूस नहीं करते।
और न्यूट्रॉन का क्या रोल है इसमें?
न्यूट्रॉन यहाँ बहुत जरूरी भूमिका निभाते हैं। वो प्रबल बल तो लगाते हैं पर उनमें कोई चार्ज नहीं होता है, इसलिए वो बिजली का धक्का नहीं मारते। वो एक तरह से प्रोटोनों के बीच गोंद का काम करते हैं, उन्हें थोड़ा दूर रखते हुए भी बांधे रखते हैं और न्यूक्लियस को स्थिर रखने में मदद करते हैं।
अच्छा, इसीलिए बड़े नाभिकों में प्रोटोनों से ज्यादा न्यूट्रॉन होते हैं।
बिल्कुल, प्रोटोन बढ़ते हैं तो रिपल्शन बढ़ता है, उसे बैलेंस करने के लिए ज्यादा न्यूट्रॉन चाहिए होते हैं।
और एक और बल था, कमजोर नाभिकीय बल, वीक न्यूक्लियर फोर्स, आपने बीटा शेयर में जिक्र किया था।
हाँ, ये प्रबल बल जितना शक्तिशाली नहीं है और इसकी पहुंच और भी कम है, लेकिन ये बहुत अनोखा काम करता है। ये कणों का फ्लेवर बदल सकता है।
फ्लेवर मतलब?
मतलब एक तरह के कण को दूसरी तरह के कण में बदल सकता है। जैसे बीटा शय में यही बल एक न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में बदल देता है, साथ में एक इलेक्ट्रॉन और एक एंटी न्यूट्रिनो निकलते हैं।
ये तो बहुत अजीब है।
है तो, ये सुनने में अजीब लगे पर सूरज के अंदर हाइड्रोजन को हीलियम में बदलने की जो पहली स्टेप है वो इसी कमजोर बल पर निर्भर करती है। इसके बिना सूरज नहीं चमकता, हम नहीं होते। क्लोज इस बल के छुपे हुए पर बेहद जरूरी महत्व को उजागर करते हैं।
ये सब तो ठीक है, मतलब एटम के अंदर की दुनिया, पर इसका हमारी दुनिया से, ब्रह्मांड से क्या लेना देना?
अरे सब कुछ। यहीं से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। देखिए, बिग बैंग के ठीक बाद शुरुआती ब्रह्मांड में सिर्फ सबसे हल्के तत्व बने, हाइड्रोजन, हीलियम और थोड़ा सा लिथियम, बस। तो फिर हमारे शरीर में कार्बन, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन, खून में लोहा, ये सब भारी तत्व कहां से आए?
कहां से?
तारों के अंदर से। क्लोज हमें तारकीय न्यूक्लियोसिंथेसिस, स्टेलर न्यूक्लियोसिंथेसिस की अद्भुत कहानी सुनाते हैं। तारों के कोर में, मतलब उनके केंद्र में, अरबों डिग्री तापमान और भयंकर दबाव होता है। वहां संलयन की प्रक्रिया चलती है।
अच्छा,
तारे अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा हाइड्रोजन को हीलियम में बदलते हुए गुजारते हैं,
जैसे हमारा सूरज कर रहा है अभी।
बिल्कुल, फिर जब कोर में हाइड्रोजन खत्म होने लगती है तो बड़े तारे, जो सूरज से काफी बड़े होते हैं, वो हीलियम को कार्बन में, कार्बन को ऑक्सीजन में, नियॉन, सिलिकॉन और इसी तरह लोहे, आयरन तक के भारी तत्व बनाते जाते हैं फ्यूजन से।
लोहे तक ही क्यों?
क्योंकि लोहा, जैसा हमने कहा, सबसे स्थिर न्यूक्लियस है। उसके फ्यूजन से ऊर्जा निकलती नहीं बल्कि लगती है। तो लोहे पर आकर ये सामान्य फ्यूजन की प्रक्रिया रुक जाती है।
तो फिर लोहे से भारी तत्व कैसे बने?
सोना, चांदी, यूरेनियम, ये सब। उसके लिए चाहिए एक महाविस्फोट, एक सुपरनोवा। जब कोई बहुत बड़ा तारा अपने जीवन के अंत में अपनी ही ग्रेविटी से ढहता है और फिर जबरदस्त तरीके से फटता है,
सुपरनोवा, हाँ,
तो उस भयंकर धमाके में इतनी ऊर्जा और इतने न्यूट्रॉन निकलते हैं कि वो लोहे के नाभिकों से चिपक कर या और प्रक्रियाओं से लोहे से भी भारी तत्व बना देते हैं, सोना, चांदी, प्लैटिनम, यूरेनियम।
और ये सारे तत्व हल्के और भारी सुपरनोवा के विस्फोट से पूरी आकाशगंगा में फैल जाते हैं।
हाँ, धूल और गैस के बादलों के रूप में।
और इन्हीं फैले हुए तत्वों से फिर नए तारे, नए ग्रह बने,
जैसे हमारा सौर मंडल, हमारी पृथ्वी,
और पृथ्वी पर जीवन।
ठीक समझे? इसलिए कार्ल सेगन और फ्रैंक क्लोज जैसे वैज्ञानिक कहते हैं, वी आर मेड ऑफ स्टारडस्ट। हम सचमुच तारों की धूल से बने हैं।
वाह।
हमारे शरीर का हर एटम, सिवाय शायद कुछ हाइड्रोजन के, कभी न कभी किसी तारे के दिल में बना था। ये सोचना ही कितना रोमांचक है।
वाकई। तो इस पूरी चर्चा से कुछ बड़े विषय या संदेश उभर कर आते हैं। पहला तो है नाभिकीय शक्ति की ये द्वैतता।
ड्यूअलिटी
मतलब दो पहलू।
हाँ।
एक ही विज्ञान E=mc2, और नाभिकीय बल हमें बिजली बनाने वाले रिएक्टर भी देता है और विनाश करने वाले हथियार भी।
ये क्लोज बार बार याद दिलाते हैं कि ज्ञान के साथ जिम्मेदारी भी आती है। बिल्कुल। दूसरा है ये ब्रह्मांडीय कीमिया, कॉस्मिक एल्केमी। हम सब तारों की संतान है। ये सिर्फ कोई कविता नहीं, ये विज्ञान है। ये हमें ब्रह्मांड से जोड़ता है। भारत में हम वैसे भी प्रकृति और ब्रह्मांड से गहरे जुड़ाव की बात करते हैं। ये वैज्ञानिक तथ्य उसे एक नया आयाम देता है। जैसे हम दिवाली पर दिए जलाकर अंधकार पर प्रकाश की विजय मनाते हैं, वैसे ही तारों ने अपने अंदर तत्वों के दिए जलाकर हमें जीवन दिया। क्या कनेक्शन है?
कमाल है। तीसरा विषय है ये अदृश्य ताकतें, अनसीन फोर्सेस। प्रबल और कमजोर नाभिक के बल, हम उन्हें महसूस नहीं करते, पर वही पदार्थ को सम्मोहल्टन, मतलब एक साथ रखने और सूरज को जलाए रखने के लिए जिम्मेदार है। वास्तविकता हमारी ऊपरी समझ से कहीं ज्यादा गहरी और अजीब है।
और चौथा, छोटे की शक्ति, पावर ऑफ द स्मॉल। न्यूक्लियस इतना छोटा है पर उसमें इतनी ऊर्जा भरी है, E=mc2। कैसे चुटकी भर पदार्थ से शहरों को रोशन किया जा सकता है या तारों को अरबों साल तक चमकाया जा सकता है। ये प्रकृति की क्षमता का अद्भुत उदाहरण है।
और पांचवा, खोज की ये यात्रा, जर्नी ऑफ डिस्कवरी। रदरफोर्ड के अचानक मिली खोज से लेकर आज क्वार्क और ग्लुओन तक, क्लोज दिखाते हैं कि ये विज्ञान कैसे इंसानी जिज्ञासा, गलतियों से सीखने और नए सबूतों के सामने पुराने विचारों को छोड़ने की हिम्मत से आगे बढ़ा है। लगातार चलने वाली प्रक्रिया है ये।
क्लोज के लेखन में कई ऐसी बातें हैं जो जहन में रह जाती हैं। कुछ यादगार विचार या कथन साझा करें जो खास तौर पर आपको अच्छे लगें।
जरूर। पहला तो न्यूक्लियस के पैमाने वाला विचार ही है। क्लोज का वो कहना कि परमाणु का लगभग सारा द्रव्यमान उसके केंद्र में एक न्यूक्लियस में केंद्रित होता है, जो परमाणु से 1,00,000 गुना छोटा होता है, ये उतना ही चौंकाने वाला था जितना ये खोजना कि एक विशाल कैथीड्रल पूरी तरह से खाली हो सिवाय केंद्र में रखे रेत के एक दाने के, जिसमें उसका सारा वजन हो। ये बात परमाणु के खालीपन और न्यूक्लियस के घनत्व को दिमाग में छाप देती है।
हाँ, ये एनालॉजी जबरदस्त है। दूसरा, E=mc2 का असली मतलब क्लोज समझाते हैं। E=mc2 का मतलब सिर्फ ये नहीं कि पदार्थ ऊर्जा में बदला जा सकता है, बल्कि यह कि पदार्थ ऊर्जा का ही एक रूप है। नाभिक को बांधने वाली बंधन ऊर्जा द्रव्यमान के इसी बंधन बल में बदलने का सीधा परिणाम है, और इसी बदले हुए द्रव्यमान को खोलना ही नाभिकीय प्रक्रियाओं को उनकी शक्ति देता है। ये बंधन ऊर्जा की जड़ और नाभिकीय ऊर्जा के स्रोत को स्पष्ट करता है।
तीसरा, हमारा वो ब्रह्मांडीय संबंध। क्लोज का ये कथन दिल को छू जाता है। आपके शरीर का हर कार्बन परमाणु, आपके द्वारा सांस ली जाने वाली हर ऑक्सीजन परमाणु और आपके रक्त का हर लोहा परमाणु एक तारे के दिल में परमाणु संलयन के माध्यम से गढ़ा गया था, जो पृथ्वी बनने से बहुत पहले जिया और मर गया। हम सबसे शाब्दिक अर्थों में तारों की संतान हैं।
ये न्यूक्लियर सिंथेसिस को कितना व्यक्तिगत बना देता है ना? बिल्कुल। और चौथा, प्रबल नाभिकीय बल की वो वेल्क्रो वाली उपमा। प्रबल नाभिकीय बल एक तरह के सब एटॉमिक वेल्क्रो जैसा है। करीब संपर्क में अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली, लेकिन थोड़ा दूर खींचने पर पूरी तरह से महत्वहीन। इसी छोटी रेंज की प्रकृति के कारण हम इसे कभी महसूस नहीं करते, फिर भी इसके बिना हाइड्रोजन से परे ब्रह्मांड में एक भी परमाणु मौजूद नहीं हो सकता था। ये इस जरूरी बल की अजीब प्रकृति को कितनी आसानी से समझा देता है।
ये तो हुई सिद्धांत और बड़ी तस्वीर की बातें, लेकिन क्या इस न्यूक्लियर फिजिक्स का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी कोई इस्तेमाल है, कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन?
अरे बिल्कुल है, बहुत है। सबसे पहले तो ऊर्जा विखंडन पर आधारित न्यूक्लियर पावर प्लांट दुनिया भर में बिजली बना रहे हैं।
हाँ, भारत में भी है।
बिल्कुल, ये बिना कार्बन उत्सर्जन के बिजली देते हैं, जो क्लाइमेट चेंज के दौर में महत्वपूर्ण है। लेकिन हाँ, इनके साथ परमाणु कचरे के निपटान और सुरक्षा की चिंताएं भी जुड़ी हैं।
और वो फ्यूजन वाला?
हाँ, सनलाइन ऊर्जा पर दुनिया भर में रिसर्च चल रहा है, जैसे फ्रांस में ITR प्रोजेक्ट। अगर हम पृथ्वी पर सूरज जैसी ऊर्जा बनाना सीख गए, उसे कंट्रोल करना सीख गए, तो ये मानवता के लिए ऊर्जा की समस्या का शायद एक स्थायी और साफ सुथरा हल हो सकता है। अभी चुनौती बहुत बड़ी है, पर उम्मीद है।
और चिकित्सा के क्षेत्र में, मेडिकल फील्ड में?
वहां तो क्रांति ला दी है इसने। PET स्कैन जैसी तकनीकों में कम हाफ लाइफ वाले रेडियोधर्मी आइसोटोप इस्तेमाल होते हैं।
वो कैसे काम करते हैं?
ये आइसोटोप शरीर में इंजेक्ट किए जाते हैं और ये खास अंगों या ट्यूमर जैसी चीजों में जमा हो जाते हैं। वहां से ये पॉजिट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है, छोड़ते हैं। ये पॉजिट्रॉन शरीर के इलेक्ट्रॉन से टकराकर गामा किरणें पैदा करते हैं, जिन्हें डिटेक्टर पकड़ लेते हैं। इससे डॉक्टर शरीर के अंदर की गतिविधियों की 3D तस्वीर बना लेते हैं। ये सीधे सीधे बीटा क्षय और पार्टिकल फिजिक्स का अनुप्रयोग है।
और कैंसर के इलाज में रेडियोथेरेपी?
हाँ, उसमें गामा किरणों या अन्य तेज कणों की नियंत्रित बौछार से कैंसर कोशिकाओं को नष्ट किया जाता है। ये नाभिकीय विज्ञान की विनाशक शक्ति का जीवन बचाने वाला उपयोग है। इसके अलावा मेडिकल उपकरणों को स्टेरिलाइज करने के लिए, मतलब कीटाणु रहित करने के लिए भी गामा विकिरण का इस्तेमाल होता है।
पुरातत्व और भूविज्ञान में भी इसका बड़ा रोल है, जैसा आपने बताया।
हाँ, कार्बन-14 डेटिंग से हम हजारों साल पुरानी चीजों की उम्र पता लगा लेते हैं, और यूरेनियम लेड डेटिंग जैसे तरीकों से, जिनकी हाफ लाइफ अरबों साल है, हम चट्टानों और पृथ्वी की उम्र का पता लगाते हैं। सोचिए, पृथ्वी की उम्र का पता हमें रेडियो एक्टिविटी से चला।
और क्या आप जानते हैं, कई घरों में लगे स्मोक डिटेक्टर में भी अमेरिशियम-241 नाम का एक छोटा सा रेडियोधर्मी स्रोत होता है।
सच में? वो कैसे?
हाँ, ये अल्फा कण छोड़ता है, जो डिटेक्टर के अंदर हवा को आयनाइज करके एक छोटा सा इलेक्ट्रिक करंट बनाए रखते हैं। जब धुआं डिटेक्टर में घुसता है, तो वो इन अल्फा कणों को रोक लेता है। हवा आयनाइज होना बंद हो जाती है, करंट टूट जाता है और अलार्म बज उठता है।
कमाल है, ये तो पता ही नहीं था। मतलब न्यूक्लियर फिजिक्स हमारे घरों में भी है।
बिल्कुल, यानी ये विज्ञान हमारी जिंदगी में अदृश्य रूप से मौजूद है। ऊर्जा, स्वास्थ्य, इतिहास की समझ, सुरक्षा, हर जगह। और हाँ, वैश्विक सुरक्षा का पहलू भी है, परमाणु हथियारों का। उनकी समझ भी इसी विज्ञान से आती है और उससे जुड़ी चिंताएं भी।
तो इस पूरी यात्रा के अंत में क्या चीज सबसे ज्यादा प्रभावित करती है, क्या टेक अवे है?
मेरे लिए तो ये सोचना ही हैरत अंगेज है कि कैसे ये नन्हा सा अदृश्य न्यूक्लियस ही पूरे ब्रह्मांड का इंजन है। तारों को जलाने से लेकर हमें बनाने तक सब कुछ इसी के इर्द गिर्द घूमता है। क्लोज का काम इस जटिल पहेली को सुलझाने में वाकई मदद करता है, उसे एक मानवीय कहानी बनाता है।
वो तारों की धूल वाली बात, ये सिर्फ तथ्य नहीं, एक दर्शन है। ये हमें ब्रह्मांड के विशाल कैनवस में अपनी जगह दिखाता है, हमें जोड़ता है और शायद थोड़ा विनम्र भी बनाता है। हम सब एक ही उत्सर से आए हैं।
तो अगली बार जब रात को आसमान में तारे देखें, तो याद कीजिएगा, आप सिर्फ दूर की रोशनी नहीं देख रहे हैं, आप उन भट्टियों को देख रहे हैं जिन्होंने आपको बनाया है। आप अपने ब्रह्मांडीय पूर्वजों को देख रहे हैं।
और ये सोचना अभी बाकी है कि इस नन्हे से न्यूक्लियस के अंदर और कौन कौन से रहस्य खुलने बाकी हैं, शायद क्वार्क और ग्लुओन के लेवल पर या उससे भी आगे।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।